ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतायणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच, क्वचित् वनासाय मनो दधत् व्रजात्, प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान्, प्रबोधयन् श्रृंग रवेण चारुणा, विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरिः।
तो भी उन्हें ये कथाएं नित्य नूतन लगती हैं। अतएव ऐसे भक्त भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना त्याग नहीं सकते। प्रजान श्रीत भक्ति प्रेमांजनक श्रीत भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय संत शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है। यम श्याम सुंदर मती के गुण स्वरूपम गोविंद लाल पुरुषम तमाम भजन ब्रह्म ग्रंथा 5:38। इसीलिए परीक्षित महाराज को भागवतोत्तम कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भक्ति में अग्रसर हुए बिना अधिकाधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता और कथाएं नित्य नूतन नहीं लग सकती।
चौदहवें का पहला
श्री ब्रह्मोवाचाय सजे कवल लक्ष्मण श्री मृत पुष्पांगजाय। ब्रह्मा ने कहा हे प्रभु आप ही एकमात्र पूज्य भगवान है।
नौमी डेवसे तदम बराया गुंजावतन परिपिच लसन मुखाया वन्य सजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदु पदे पुष्पांग जाया।
ब्रह्मा ने कहा हे प्रभु आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतः आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सागर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर नवीन बादल के समान बहरा नीला है, आपके वर्ष बिजली के समान दीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा शीर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी लकड़ी श्रृंग और बंसी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। तात्पर्य पिछले अध्याय में ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण के ग्वाल मित्रों तथा उनके बच्चों को चुरा कर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु जब कृष्ण ने रंच भर अपनी योग शक्ति प्रदर्शित की तो ब्रह्मा जी पूर्णतया मोहित हो गए और अब वे अत्यंत विनय एवं भक्ति भाव से उन्हें सादर नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं। इस श्लोक में कवल शब्द कृष्ण द्वारा बाएं हाथ में चावल तथा दही के कौल का सूचक है। सनातन गोस्वामी के अनुसार कृष्ण अपने हाथ में गाय चराने वाली छड़ी लिए थे और बाएं कांख में श्रृंग दबाए थे। उनकी बंसी उनकी कमर पेटी के नीचे लगी थी। रंग बिरंगे जंगली खनिजों से अलंकृत सुंदर बाल कृष्ण वैकुंठ के ऐश्वर्य को लजा रहे थे। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान के असंख्य चतुर्भुज रूप देखे थे किंतु अब उन्होंने विभिन्न कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया जो नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने इसी रूप की स्तुति की।
वृंदावन चंद महाराज श्लोक पढ़िए 14वें का पहला श्लोक।
श्री ब्रह्मोवाच नौमीड्यते प्रभुपुषे तदिदं वराय गुञ्जावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिय मृदु पद पशुपांग जाय
चित बना सह मनो दधत विजात प्रातः समुत्थाय वयस्य मत्स्यपान प्रबोधयन सिंह रमेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पूरा सरोवरी। एक दिन भगवान कृष्ण वन में भोजन करने के लिए बहुत जल्दी उठ गए प्रातः समुत्थाय, बहुत तड़के उठ गए, तड़के का अर्थ पाए भोर में उठ गए और सिंह रमेण सिंह की ध्वनि से, गायों के सिंह से बने हुए बिगुल बजा करके अपने साथी ग्वाल बालों को जगा करके उनको संबोधन करके कहे कि चलो आज वन भोजन करना है। ग्वाल बाल तो पहले से उत्सुक थे, वो सुनते ही भगवान की आवाज में जग गए, सब अपने अपने बछड़ों को आगे करके भगवान के साथ निकल गए। जंगल में विहार करने के लिए, वन विहार करने के लिए निकल गए। कोई किसी की छड़ी को चुरा रहा था, कोई किसी के छड़ी, कोई भोजन को टांगने के लिए जो सिक्का छीका होता है उसी को चुरा लेता था, और वे परस्पर खेलते हुए बिहार करते हुए जा रहे थे। तब तक वो अघासुर वहाँ बस बड़ा सर्प बन करके खेल रहा था, देख रहा था। वो सब खेलते हुए ग्वाल बाल, गोपों के बच्चे उसको समझे कि ये कोई खेलने का स्थान है। गुफा फैला हुआ था, बहुत विशाल गुफा द्वार, उसके समझे कि हमारे खेलने का स्थान है। कुछ बच्चों ने कहा कि अरे ये देखो, ये सर्प के जबड़े से होड़ कर रहा है, सर्प जैसा ही लग रहा है कि नहीं? कुछ बच्चों ने कहा अरे बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल हमारे खेलने का स्थान है, इसको ब्रह्मा ने बना करके हम लोगों के लिए ही रखा है। ये कहते हुए वे सब बच्चे उसी को खेलने का स्थान समझ करके अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। कुछ बच्चों ने कहा कि ये क्या हमको निगल जाएगा, तो कुछ बच्चों ने कहा कि अरे क्या निकलेगा, अभी हमारे पास हमारा कन्हैया है ना, ये इसको बकारी है ना, जैसे बक को मारा कृष्ण वैसे इसको भी मार देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वे हाथ ताली पीटते हुए हंसते हुए अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। कितना विश्वास है भगवान पर कि देख रहे हैं कि सामने मृत्यु है, अघासुर है, फिर भी भगवान पर विश्वास किए, ये हमको क्या करेगा, हम तो कृष्ण के शरण में हैं। इस तरह वे ताली पीटते हुए हंसते हुए अघासुर के मुख में चले गए। लेकिन वो अघासुर अपने दांतों से पीस नहीं पाया उनको, वो प्रतीक्षा कर रहा था कि हमारे मुख में हमारे भाई, बड़े भाई और छोटी बहन, बड़े भाई बक को यही मारा है, एक कृष्ण मारा है, जब तक कृष्ण भीतर नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं पीसूंगा। वो पूतना की याद कर रहा था, उसकी पूतना बहन थी और बकासुर भाई था, तो पूतना की याद करके और बकासुर की याद करके वो सोच रहा था कि कृष्ण हमारे मुख में समा जाए तब पीसूंगा सबको। इतना सोच करके वह पीसना चाहता था, जब कृष्ण आ गए मुख में तब भगवान को ले लिया मुख में, तो उसके साथ पहले तो ग्वाल बाल सभी बछड़े और ग्वाल बाल मुख में चले गए थे। वो सोच रहा था कृष्ण जब आ जाएगा तब पीसूंगा, अपने दांतों से पीसूंगा। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे। वृंदावन चंद हमें बोलिए।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओ महाराज, पुस्तक बनवाए हैं 3 अध्याय क्या? अरे कोई पूछा कि कहाँ कथा करने के लिए आप ये पुस्तक बनवाए हैं, गाय के अभी नहीं बतलाएंगे। जो हो जैसा आप प्रारंभ में सुने, भगवान के वन विहार की लीला महाराज प्रारंभ किए। एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि हम लोग वन में ही भोजन करेंगे। वो भगवान के बिहार की अपनी योजना है और इसके साथ ही कंस की भी योजना चल रही थी। कंस किसी तरह कृष्ण बलराम का वध करना चाहता था। वो एक एक से बलवान दैत्य को भेजता था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। जो कृष्ण बलराम को मारने के लिए गया वो लौट करके नहीं आया, तो बहुत चिंतित था। और उसको चिंता को देख करके अघासुर प्रश्न कर दिया, क्यों इतना चिंतित है? एक दिन सभा में ही बहुत चिंता की मुद्रा में बैठा था, कि क्यों इतना चिंतित है? अरे ब्रज के जो बच्चे हैं उनसे हमको भय है, दो लड़कों से भय करते हैं, ये काम हमको क्यों नहीं दे देते हैं? और कंस कहा कि कैसे आप पर हम विश्वास करें, आपके भाई बहन तो सफलता नहीं प्राप्त किए। अघासुर कहा कि ना, ये कार्य हमको दे दीजिए और आप निश्चिंत रहिए। मैं मानता हूं कि हमारा भाई बलवान था, लेकिन उसकी नीति ठीक नहीं थी। अरे शत्रु के पास जाना है तो कुछ नीति का भी अवलंबन करना चाहिए। तो जिस रूप में था, जैसे था, वैसे ही चला गया। और हमारी बहन भी शक्तिशाली है, लेकिन कितना हूं हो जोध है, स्त्री है, उसको सफलता नहीं मिली, तो उसके आधार पर आप निराश मत होइए, ये कार्य हमको दे दीजिए। जब ऐसे कोई कहने वाला मिला तो कंस को भी कुछ आशा आई, कभी इससे अच्छा क्या होगा। तो अघासुर इस कार्य को लिया और जैसा महाराज बतला रहे थे कि सखाओं को अपने मुंह के अंदर वो ले लिया, लेकिन उनको पीसा नहीं, चूर्ण नहीं किया। उसका दो कारण था कि अभी कृष्ण तो उसके मुख में आए नहीं थे और उसकी योजना थी कि उनको चूर्ण करके नहीं, एकदम ऐसे उनके शरीर को, डेड बॉडी को मथुरा लाना है। एक कंस को विश्वास हो जाए पूरा पूरा कि वे मर गए, तो इसलिए रखा था, प्रतीक्षा में था। तो जो हो, हम यह कह रहे थे कि अघासुर इस कार्य को लिया और सोचा कि मैं धरती से नहीं जाऊंगा, पहले मैं चल करके हवाई सर्वे कर लूं कि किस स्थिति में है, तो आकाश मार्ग से चला। ऐसा आप प्रारंभ में ही सुने, नहीं श्लोक दिख रहे कि पीता मरे रप्य, यद्यपि देवता लोग अमृत का पान किए हैं, अमृत पान करने से व्यक्ति को मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, अमर हो जाता है, लेकिन अघासुर से वे इतना भयभीत थे कि प्रतीक्षा में थे अपने जीवन की रक्षा के लिए कि कब इसकी मृत्यु हो। पीता मृतय रपि, यद्यपि वे अमृत का पान किए हैं, लेकिन फिर भी अघासुर से इतना भय था कि प्रतीक्षा करते थे कि कब इसकी मृत्यु हो जाए कि हम लोग जीवित रहे। जब तक वो जीवित है तो अमृत पीने के बाद भी उनको अब जीवन की आशा नहीं थी। और अब देवता लोग तो कृष्ण बलराम के लीला को देख रहे थे आकाश में अपने विमान को खड़ा करके। भगवान योजना बनाए कि वन में हम लोग भोजन करेंगे, तो अपने लीला को प्रारंभ किए, भोजन कर रहे थे, देवता लोग आनंद से देख रहे थे। और तब तक सांस आवाज आने लगा, अब तो भयभीत हो गए कि अरे ऊपर से आ रहा है, वो अमृत पान किए हैं, लेकिन फिर भी भयभीत होकर जैसे तैसे वो बादलों के ओट में छिपे कि कहीं रास्ते में हमारे तरफ दृष्टि आ गई और एक थप्पड़ मार देगा तो हम तो घुलट करके मर जाएंगे। और वो जाकर के देखा कि बच्चों के साथ बहुत आनंद कर रहा है, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। और उपाय वो सोचा कि सबको मुख में लेना है, और सबसे पहले वो अपने मुंह को फैला करके धरती से आकाश तक फैला दिया। जैसा आप वर्णन सुने, महाराज श्री बतला रहे थे कि उसको देह करके बच्चे विकल्प करने लगे, कहने लगे कि देखो ये जो गुफा है वो ठीक सांप जैसा दिख रहा है। वे एक एक चीज की व्याख्या कर रहे थे, देखो ये जो गुफा में रोड है ना लाल लाल, एकदम जैसे वन में गुफा में मोरम का रोड होता है वैसे लाल दिख रहा है। और उसके मुख से दुर्गंध आ रहा था, तो व्याख्या कर रहे थे कि देखो ये गुफा में जंगल में आग लगने से पशुओं का मांस जल रहा है तो दुर्गंध आ रहा है। तो ऐसे कई एक ढंग से वे विचार कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि खेलने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। और कोई कोई कह रहा था कि सांप जैसा दिख रहा है और कदाचित वास्तव में सांप होगा तो क्या होगा। आप सुने कि कोई कह दिया कि अरे सांप ही होगा तो क्या होगा, बकारी हम लोगों के साथ है। और कृष्ण पर विश्वास था और वे आनंद में थे, तो निर्णय लिए कि चल करके इसमें प्रवेश करके देखा जाए कैसा है। अब बच्चे हैं, प्रवेश करने की योजना आई, उनके मन में आया, उत्साह बढ़ गया, उत्साह में ताली बजाने लगे। वो ताली बजाए तो आगे बछड़े थे, तो बछड़े तो अब दौड़ गए, बिजुक गए, और बिजुक करके वो सांप के मुख में प्रवेश ही कर गए। सबसे पहले बछड़े प्रवेश किए, अब बछड़ों के पीछे ताली बजाते हुए आनंद के साथ ये भी प्रवेश कर गए, और कृष्ण संयोग से पीछे थे। कृष्ण वहीं से आवाज दे रहे हैं कि अरे रुको रुको, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, सांप है सांप है। वो जोर जोर से आवाज दे रहे हैं, लेकिन वे अपने खेल के उत्साह में इतने निमग्न थे और ताली बजा रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे कि कृष्ण की बात उनको सुनाई नहीं दे रही थी। कृष्ण पीछे से आवाज दे रहे हैं लेकिन उनको कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही, अपने आनंद में थे। और जब सब प्रवेश कर लिए तब तो अघासुर बहुत प्रसन्न हुआ कि सब हमारे भीतर आ गए, तो मुख बंद किया, लेकिन फिर भी एक बार बंद करके अंदर ले लिया, लेकिन फिर भी अभी कृष्ण की प्रतीक्षा में था कि जब तक कृष्ण नहीं आ जाते तब तक तो पूरा हमारा काम हुआ नहीं। तो वे उसी के प्रतीक्षा में था कि कृष्ण आ जाए। और अब इधर तो कृष्ण बहुत चिंतित हुए, वे देख लिए कि हमारे सारे सखा और बछड़े अघासुर के मुख में चले गए। तो तान्वेक्ष कृष्ण सकला भज प्रदो यनन्य नाथान स्वकरा दवच्युतान दीनांश मृत्योर जठराग निघासान घृणार्थ तो दृष्टि कृतेन विस्मित। अब कृष्ण के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तान्वेक्ष कृष्ण अपने सखाओं को और बछड़ों की यह स्थिति देख करके यनन्य नाथन उनके विषय में कह रहे हैं कि भगवान के मन में तो विचार आ रहा है कि हमको छोड़ करके इनका कोई रक्षक नहीं है, हमारे अतिरिक्त किसी दूसरे को ये अपने रक्षक के रूप में वर्ण नहीं किया। और भगवान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि सकला भय प्रदो, भगवान सबको अभय प्रदान करने वाले हैं, लेकिन अब अपने सखाओं की स्थिति के विषय में सोच रहे हैं कि दीनान मृत्युर जठराग निघासान, ये हमारे जो सखा हैं वे तो बहुत भारी विपत्ति में पड़ गए, अब पर बहुत भारी परवस्ता उनके सामने प्रस्तुत हो गई। क्या मृत्यु जठराग्नि घासान, ये तो मूर्तिमान मृत्यु के ही कवर बन गए, ग्रास बन गए, मुख में निगल लिया घृणार्दी। तो अब कृष्ण विचार कर रहे हैं कि ये सब संजोग है, भाग्य का खेल है, भगवान ऐसे पुकार रहे अपने जोर लगा करके पूरी आवाज के साथ, और उनके आंख के सामने ही बच्चे मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। तो दृष्टि कृतेन, उनके मन में यही विचार आ रहा है कि ये तो दुर्भाग्य का खेल, घृणार्दित। अब ग्वाल बाल के स्थिति को देख करके कि मृत्यु के मुख में चले गए, उनके मन में दया की भावना भर गई, उससे वे आविष्ट हो गए, और उनके मन में विचार आ रहा है कि भाग्य का खेल। और सुखदेव गोस्वामी उनकी स्थिति को बतला रहे हैं तो स्वकरा अवच्युतान, जैसे कोई व्यक्ति पर्स में पैसा रखा, खास करके स्त्रियां वो अपने आंचल में ही कुछ बांध देते हैं, कभी कभी गिर जाता है, कभी कभी कपड़ा में लिया हाथ में गिर जाता है, तो जैसे अपने वस्त्र में बांधा हुआ पैसा या रत्न गिर जाए तो व्यक्ति शोक में पड़ जाता है। और ठीक कृष्ण की वही स्थिति हुई कि हमारे देखते देखते सावधान रहने पर भी हमारे हाथ से निकल गए, स्वकरात अवच्युतान। अबे वे बहुत भारी चिंता में पड़े और विस्मित है, बहुत भारी विस्मय में है कि हम प्रयास करते रह गए, उनको मना करते रहे और हमारे हाथ से निकल गए, एकदम मृत्यु के ग्रास बन गए, और ये तो बहुत भारी दुर्भाग्य है। लेकिन जो हो, कृत्यम की मात्रा से खलस्य जीवनम नवा अमीशाम च सताम विहंसनम। अब ये विचार करने लगे कि हमको क्या करना चाहिए इस स्थिति में कि इस खल का जीवन भी न बचे और हमारे साथियों का, ये भक्तों के हिंसा न, वे पूर्ण सुरक्षित रहें और इसका जीवन न बचे, तो हमको क्या करना चाहिए। द्वयम कथम स्याद इति सम विचिन्त्य तज ज्ञात्वा विशत तुंड मशेष दीर्घहरी। अरे क्या, इसी वो चिंता में पड़े, योजना करने लगे कि हमको क्या करना चाहिए कि अघासुर का जीवन न बचे और हमारे जो साथी हैं, बछड़े हैं, तो उनको किसी प्रकार के कोई क्षति न हो। तो द्वयम कथम स्याद इति सम विचिन्त्य, दोनों कार्य कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं तज ज्ञात्वा विशत तुंड मशेष दीर्घहरी। अब भगवान को बहुत योजना करने की जरूरत नहीं है, वे तो सब कुछ जानने वाले हैं, सब तरह उनकी दृष्टि है। तो यह विचार करके वे खुद ही उसके मुख में प्रवेश कर गए। तदा घनच्छदा देवा भयाधा हेति चुक्रुषु। अब तो देवता लोग पहले ही बहुत भारी कष्ट में थे कि कृष्ण के सखा और बछड़े सब इस दुष्ट के मुख में चले गए हैं। अब कृष्ण भी जब उसमें प्रवेश कर गए तो कह रहे हैं कि तदा घनच्छदा देवा भयाधा हेति चुक्रुषु। वे तो जोर से चिल्लाने लगे, हाय हाय हाय, ये तो बहुत भारी दुर्भाग्य है। जहरसुच ये कंसाद्या कौणपा त्वग बांधवा। और कुछ कुछ अघासुर के सहयोगी भी थे, तो कुछ कंस पक्ष के लोग भी थे। जब वे इस दृश्य को देखे तो अब वे तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन कृष्ण अंदर प्रवेश किए और तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण त्वय सर्ववत्सकान् चूर्णी चिकीर्षु रात्मानं तरसा बबृधे गले। जब कृष्ण अघासुर के मुख में चले गए तो बहुत प्रसन्न हुआ। अब सोचा कि इनको पूरा अपने मुख में ले लें और इनको मार डालें, दबा करके मार डालें। अब युवा उनको मारने की योजना कर रहा था कि इतना इस पर प्रेशर डाले कि एकदम ये मर जाए। तो चूर्णी चिकीर्षु रात्मानं तरसा बबृधे गले। लेकिन जब ही योजना किया कि इनको दबा दे, चूर्ण कर दे, तब तक भगवान तरसा बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अब भगवान अपने शरीर का विस्तार किए तो निरुद्ध मार्गिण, अब जो भी हवा जाने का तंत्र था, रास्ता सब रुक गया। और अब अघासुर को बहुत कष्ट होने लगा। उस सांप का स्वभाव है कि जब वह बहुत कष्ट में पड़ता है तो अपना पूंछ पटकने लगता है। और भगवान उसके सारे श्वास तंत्र को अवरुद्ध कर दिए, शरीर बढ़ा करके। वो तो अब कष्ट के मारे अपना पूंछ पटकने लगा। लेकिन अब पूंछ पटकने से क्या हुआ, हवा का इतना प्रेशर बढ़ा कि अब हवा से, प्राणवायु से उसका ब्रह्मांड फट गया। और ब्रह्मांड फट गया विनिर्गतो बही, अब उसको फाड़ करके वो बाहर निकल गया। अब जब हवा प्राण वायु उसे बाहर निकला तो तेने वो सर्वे से बहिर्गतेषु, अब सारे लोग उसी मार्ग से बाहर आ गए, कृष्ण भी आ गए और लोग भी आ गए। और अब वे तो बहुत भयभीत थी वे, और जान बचा, अब वे उस दिन काहे को अब कुछ दूसरा करने जाए। अब बहुत भयभीत हो गए, भोजन क्या करें, और अब बहुत और भी घटनाएं हैं। उसका प्राणवायु निकला एकदम ज्योति के रूप में और कृष्ण में प्रविष्ट किया। हम यह कह रहे थे कि तो 3 अध्याय की लीला है, तो वे लोग तो अब भोजन का विचार छोड़ दिए और बहुत दिन तक वो सो करके उनके खेल का स्थान बना। लेकिन तो ब्रह्मा जी भी भगवान के लीला को देख रहे थे कि इतने आनंद के साथ ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खास करके भोजन करते समय बच्चों के जूठा को भी खा रहे हैं, तो वे बड़ा विस्मय में पड़े। ये कैसे भगवान है, ये क्या इनकी लीला है। जैसे देवता लोग भगवान के भोजन की लीला को देख रहे थे, तो ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। और उस दिन सब बच्चे अपने घर से ले गए थे और सब एक साथ खा रहे थे। और कभी कभी बच्चे कोई चीज खाए, सखा लोग कोई मिठाई खा रहे हैं, और मिठाई खाने में मीठा लगता था, वो कहते थे कितना मीठा है। और अब उसके मिठास से प्रभावित होकर के सुख अनुभव करके उनके मन में लालसा होती थी कि कृष्ण को भी इसको स्वाद चखाना चाहिए, तो जूठा मिठाई ही कभी कभी दे देते थे। और कभी कभी वे कोई अदरक का अचार खाए या आम का अचार खाए तो ऐसे चूस करके अरे कितना अच्छा है वो करते, तब तक कृष्ण छिनने लगते थे। अब ये सब दृश्य देख करके ब्रह्मा जी बहुत विस्मित हुए और उनके मन में इच्छा हुई कि भगवान के ऐसी लीला को और देखा जाए। तो ब्रह्मा जी अब बछड़ों का चोरी किए, ग्वाल बाल को चुरा लिए, और भगवान तो भोजन कर रहे थे, और उसी समय अब बछड़ों की याद आई। बच्चे बहुत भयभीत हो गए कि आखिर बछड़े नहीं रहेंगे तो हम लोग घर जाकर के कहेंगे क्या। बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अरे बछड़ा दिख नहीं रहे हैं, तो घर वाले पूछेंगे ना कि बछड़ा गए कहाँ, तो हम लोग जवाब क्या देंगे। और कृष्ण कहे कि चिंता मत करो, हम लाएंगे। तो भगवान ने ऐसे अपने हाथ पर दही भात लिए हैं और अपने उंगली के बीच में अचार खोस करके लिए बछड़ों को खोज रहे, चारों तरफ खोज रहे हैं। और ब्रह्मा जी को यह देख करके बहुत अच्छा लगा था, कृष्ण का यह रूप उनको बहुत अच्छा लगा था। और यद्यपि जो कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं कि वेदाहम समतीतानि, हम भूत को पूरा पूरा जानते हैं, भविष्य को पूरा पूरा जानते हैं, वर्तमान को पूरा पूरा जानते हैं, लेकिन वे कृष्ण भारी चिंता में बछड़ों का अन्वेषण कर रहे हैं। और उसका छाप ब्रह्मा जी के हृदय पर बहुत भारी पड़ा, बहुत गहरा छाप पड़ा। और सब लीला पूर्ण करने के बाद जब भगवान उनके सामने उपस्थित हुए, तो ब्रह्मा जी के चित्त पर भगवान का वह रूप, वह मूर्ति, वह लीला इतना छाया हुआ था कि प्रथम उसी का अनुवाद करके, उसी को प्रस्तुत करके भगवान को नमस्कार कर रहे। जैसे आप लोग श्लोक सुने, नौमिड्यते ब्रबपुसे तदिदं वराय, भगवान के उसी रूप का वर्णन कर रहा है। नौमिड्य हे इड्य हे पूज्य, नौमी हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। नौमिड्य ते ब्रबपुसे, उनके श्री विग्रह का वर्णन कर रहे हैं कि जल युक्त बादल के समान कांति से युक्त है, नौमिड्य तीव्र बप से तदिदम बराय, और जो वस्त्र है बिजली के समान चमक रहा है। और लक्षण क्या आ रहा है कि आप हाथ में दही भात लिए हैं, उंगुली में अचार खोसे हैं, लक्ष्मश्री मृदुपांग जाय, और छोटे छोटे आपके पैर हैं, आप नंद गोप के पुत्र हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी मंजू लीला भगवान की सुंदर लीला का दर्शन करना चाहते थे, तो भगवान उनको अवसर दिए, लीला का भी दर्शन कराए और उनको बहुत छकाए भी, बहुत विस्मित भी किए। तो बहुत बहुत बातें हैं जिसको अब एक के क्लास में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में जैसे महाराज का सिनोप्सिस है तो उसके अनुसार अघासुर के लीला से लेकर के ब्रह्मा जी के स्तुति तक प्रस्तुत करना चाहते, कहां प्रस्तुत करेंगे अब तक है तो नहीं पता है, कम से कम हमको नहीं पता है। तो भगवान ने जो श्लोक पढ़ा रहे थे, वास्तव में महाराज के भी हृदय पर ये सब बातें अंकित हैं, उसी का आवेश है, वो आवेश से एक बात के आवेश से दूसरे बात को विस्मृत हो जाते हैं। तो अब इसका वे पढ़ते रहते हैं, लोगों से पढ़वा पढ़वा करके सुनते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के चित्त पर सबसे अधिक भगवान का वही रूप अंकित है कि भगवान हाथ में दधि भात लेकर के बछड़ों का अन्वेषण कर रहे हैं और कहीं पता नहीं चल रहा है। यह अद्भुत दृश्य है कि जो सब कुछ जानने वाला है, सबको अभय प्रदान करने वाला है, और उसके चिल्लाते चिल्लाते और उनके साथ ही मृत्यु के मुख में चले गए, और जो सब कुछ जानने वाला है वो बछड़ों को अन्वेषण कर रहा है और खोज नहीं पाए, दूसरा उपाय बनाए। तो ये सब है भगवान के ऐश्वर्य और मुग्धता, कई एक चीजों का मिश्रण करके भगवान के लीला का प्रस्तुतिकरण किया गया है, भगवान के मोहक रूप को रखा गया है। अब इसमें कंट्रास्ट है, एक तरफ एक पक्ष है और दूसरे तरफ उसका विरोधी पक्ष है, और दोनों का मिश्रण भगवान के व्यक्तित्व में उभर रहा है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत सुंदर लीला है। तो कभी अवसर होगा तो महाराज के मुख से हम लोग इसका विस्तार से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की